राधिका ने इशिका को मिलने के लिए घर पर बुलाया था। उस वक्त आदर्श और आयशा घर पर नहीं थे। राधिका श्रुति से इशिका के बारे में बात कर रही थी। श्रुति राधिका से तो प्यार करती थी, लेकिन उसे इशिका बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि बचपन में राधिका ने इशिका का बहुत ख्याल रखा था। राधिका पिछले कई सालों से काफी बीमार थी। ये सब जानते हुए भी वो एक बार भी उसका हालचाल पूछने के लिए नहीं आई थी। राधिका ने श्रुति को बताया कि वो इशिका ही थी जिसने उसके लिए हॉस्पिटल में रूम प्रोवाइड करवाया था। उसी की वजह से उसे वो दवाइयां मिली थीं जिसकी वजह से वो आराम से सो पाती थी। इतना सब कुछ सुनाने के बाद भी श्रुति का दिल नहीं पिघला। वो उसी बेरहमी से बोली, ठीक है, मान लेती हूँ उसने तुम्हारी मदद की थी। उसके दिल में थोड़ा बहुत दया भाव होगा और इंसानियत भी जिंदा होगी। ऐसी छोटी मोटी चीजों से तुम्हें बहलाना बहुत आसान है। मैं यही कहूंगी कि तुम उसकी बातों में मत आना। तुम भी? श्रुति बोलते हुए रुक गई क्योंकि उसने देखा राधिका उसकी तरफ गुस्से में देख रही थी। श्रुति ने तुरंत बात बदल दी और कहा, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर इशिका के दिल में तुम्हारे लिए प्यार था तो वो इतने सालों तक कहाँ थी? तुम उसके लिए बेवजह डॉक्टर मर्चेंट को प्रेशराइज कर रही हो। याद है ना, डॉक्टर मर्चेंट की तुमने थोड़ी सी मदद की थी, उसके बावजूद वो तुम्हें बर्थडे पर गिफ्ट तक देना नहीं भूलते। हर फेस्टिवल पार्टी में तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट भिजवाते हैं। कंपनी में इतनी हेल्प की, ऐसे में तुम उनसे फेवर मांगकर उनकी इंसल्ट तो मत करो। इशिका ने गलती की है और डॉक्टर मर्चेंट को उसे जरूर सजा देनी चाहिए। श्रुति राधिका को समझाना चाहती थी। राधिका ने आह भरी और कहा, ठीक है, समझ गई। दोनों मेरे लिए एक जितने ही जरूरी हैं। मैंने इशिका को हमेशा बेटी की तरह प्यार दिया है, तो दूसरी तरफ डॉक्टर मर्चेंट ने भी मेरी बहुत मदद की है। मैं डॉक्टर मर्चेंट को भी दुखी नहीं करना चाहती। चलो, तुम्हें समझ में आया, यही बड़ी बात है। वो यहाँ आ रहे हैं तो उनका अच्छे से वेलकम करते हैं। बाकी उनके पर्सनल मैटर्स के लिए उन पर दबाव डालना अच्छी बात नहीं है राधिका, श्रुति ने इस बार काफी नरम लहजे में कहा। वो दोनों बातें कर रही थी तभी उन्हें गाड़ी की आवाज आई। उन्होंने देखा आयशा घर वापस आ गई थी। आयशा के आते ही राधिका ने सीधे सीधे पूछा, आयशा, आज की मीटिंग कैसी रही? राजवंश एम्पायर ने इशिका के साथ सख्ती तो नहीं की ना? राधिका के पूछते ही आयशा को आज जो भी हुआ वो सोचकर गुस्सा आने लगा। उसने खुद के गुस्से को काबू करके कहा, आप ये सब उससे ही क्यों नहीं पूछती? मैं पूछना चाहती थी लेकिन फिर सोचा कि कहीं मेरी बातों से वो हर्ट ना हो जाए। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती, राधिका ने धीमी आवाज में जवाब दिया। आयशा ने गहरी सांस ली और कहा, नक्श ने बात को उसके ऊपर नहीं आने दिया और खुद ही सब संभाल लिया था। आयशा ने राधिका से इशिका के डॉक्टर मर्चेंट होने की सच्चाई छुपा ली थी। आयशा अपने चेहरे से जाहिर नहीं कर रही थी लेकिन राधिका के सवालों से परेशान कर रहे थे। वही इशिका को कुछ नहीं हुआ ये सुनकर राधिका ने राहत की सांस ली। वो मुस्कुराकर बोली, नक्श वाकई एक अच्छा लड़का है। आयशा, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि किसी दिन नक्श को डिनर पर बुलाओ? मैं उसे अच्छे से थैंक यू कहना चाहती हूँ। ठीक है, आयशा ने परेशान चेहरे के साथ कहा। मीटिंग होने के तुरंत बाद ही अभिमन्यु ने ये ऑर्डर जारी कर दिया था कि कोई भी डॉक्टर मर्चेंट की पहचान को सबके सामने न बताएं। कुछ लोग तो उसका नाम भी नहीं जानते थे, बस वो उसे खूबसूरत इंटर्न कहकर बुलाते थे। ये सब उसने इशिका की भलाई के लिए ही किया था। वेबसाइट पर जो भी कमेंट या इशिका की पहचान रिवील होने से जुड़ी हुई न्यूज थी उसे अभिमन्यु ने तुरंत हटवा दिया था। आयशा इन सब के बारे में सोच रही थी तभी घर की डोरबेल बजी। उसका ध्यान दरवाजे की तरफ गया। हाउस हेल्पर ने दरवाजा खोला तो सामने इशिका खड़ी थी। इशिका को देखकर राधिका हैरान हो गई। उसने पूछा, इशिका, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? आपको याद नहीं, आपने ही मुझे बुलाया था, इशिका ने हल्का मुस्कुराकर कहा। राधिका हैरान रह गई थी। इशिका ने उनका और डॉक्टर मर्चेंट का चैट रूम खोला और उसे राधिका के सामने ले जाकर दिखा दिया। व्हाट्सएप स्क्रीन पर उनकी चैट देखकर राधिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इशिका ही डॉक्टर मर्चेंट है। श्रुति ने गुस्से भरी निगाहों से इशिका को देखा और फिर राधिका के पास आकर बोली, राधिका, डॉक्टर मर्चेंट कहाँ पर है? क्या आज मीटिंग के दौरान उनके और इशिका के बीच में कोई बहस हो गई थी क्या? देखो, बुरा मत मानना, मेरा मानना यही है कि इशिका को यहाँ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर मर्चेंट उसे यहाँ देखेंगे तो वो अपसेट हो जाएंगे। बातों ही बातों में श्रुति ने इशिका को वहां से जाने के लिए कहा। श्रुति बहुत सालों से राधिका की देखभाल कर रही थी। वो दोनों स्कूलमेट थी और खास फ्रेंड्स भी। श्रुति के मुश्किल टाइम में राधिका ने उसे संभाला था। ऐसे में जब राधिका के इतने बीमार होने पर भी इशिका मिलने के लिए नहीं आती थी तो श्रुति के दिल में इशिका के लिए नफरत पैदा हो गई थी। वो उससे काफी रूखे तरीके से बात किया करती थी। अचानक राधिका ने श्रुति का हाथ पकड़ लिया और कांपती आवाज में कहा, श्रुति, इशिका ही डॉक्टर मर्चेंट है। क्या? श्रुति ने हैरानी से कहा और फिर इशिका की तरफ देखने लगी। डॉक्टर मर्चेंट ने राधिका के लिए क्या कुछ नहीं किया था ये उससे बेहतर कौन जान सकता था।
इशिका के डॉक्टर मर्चेंट होने की सच्चाई सुनते ही श्रुति का सारा गुस्सा और नफरत एक पल में गायब हो गया था। इशिका के सब सच बताते ही आयशा ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। वो नहीं चाहती थी कि वो लोग इस टॉपिक पर ज्यादा बात करें। उनके बात करने का मतलब था आयशा की सारी की गलतियां सामने आना। आयशा जल्दी से वहां से ऊपर चली गई। आयशा की इस हरकत पर राधिका ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। उसने गहरी सांस ली और फिर आयशा के कंधे पर प्यार से हाथ रखकर सहलाते हुए कहा, बेटा तुमने सिंघानिया फैमिली के लिए इतना सब कुछ किया है, फिर तुमने आज तक बताया क्यों नहीं कि तुम ही डॉक्टर मर्चेंट हो? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये छुपाना नहीं चाहिए था, इशिका ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। बेटा तुम माफी क्यों मांग रही हो? उल्टा माफी तो हमें मांगनी चाहिए जो हमने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। मुझे खुशी है कि तुम अपने फील्ड में इतनी आगे बढ़ी हो, राधिका ने खुश होकर जवाब दिया। इशिका की सफलता से उन्हें काफी राहत महसूस हुई। राधिका ने इशिका का हाथ पकड़कर उसे अपने पास सोफे के पास ले जाते हुए कहा, अच्छा मुझे बताओ कि उस मामले का क्या हुआ? आयशा ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी क्या? इशिका इस टॉपिक पर ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी और ना ही आयशा की सच्चाई बताकर राधिका को हर्ट करना चाहती थी। उसने राधिका की बैठने में मदद की और फिर उसके पास बैठते हुए बोली, ये बस एक गलत फहमी थी जो दूर हो गई है। इशिका अच्छे से जानती थी कि राधिका कितनी अच्छी औरत थी। वो अपने काम और फैमिली को बैलेंस करके चलना चाहती थी, लेकिन खराब तबीयत के चलते कुछ कर नहीं पाती थी। आयशा की तरह वो उससे भी बहुत प्यार करती थी। ऐसे में अगर आयशा की सच्चाई सुनकर वो अपने दिल पर ले लेती तो उनकी तबीयत फिर से खराब हो जाती, जो इशिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इशिका इस टॉपिक पर ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत टॉपिक बदलते हुए कहा, मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे आपसे एक मदद चाहिए। हाँ बताओ क्या मदद चाहिए, मुझे तुम्हारी हेल्प करके बहुत खुशी महसूस होगी, राधिका ने प्यार से पूछा। इशिका थोड़ा हिचकिचाई और फिर कहा, एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि स्टॉक काफी ऊपर जाने वाले हैं, मुझे कुछ शेयर्स खरीदने हैं, जल्द ही मेरी कंपनी पब्लिक होने वाली है। मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन जो पैसे हैं वो मैंने पहले से ही इन्वेस्ट कर रखे हैं। राधिका समझ गई थी कि इशिका क्या कहना चाह रही है। उन्होंने उसकी बात बीच में काटते हुए पूछा, अच्छा बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए?
सिंघानिया फैमिली के पास कितनी प्रॉपर्टी और पैसा था उसे हिसाब से ध्यान रखते हुए इशिका ने काफी सोच समझ कर कहा, मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए। इशिका ने जानबूझकर इतने पैसे मांगे थे ताकि अगर आशीष आयशा के पास मदद लेने के लिए आए तो आयशा को राधिका से पैसे मांगने का मौका ना मिले। आदर्श से वो कभी इतने पैसे डिमांड नहीं कर सकती थी। ऊपर से उनके प्लान के चलते कल ही आशीष को 5 करोड़ का तगड़ा झटका लगा था। राधिका ने कुछ पल सोचा और कहा, मेरे नाम काफ़ी सारी प्रॉपर्टी हैं, लेकिन कैश की बात करूँ तो मेरे अकाउंट में इस वक्त 25 करोड़ रुपये हैं और मैं तुम्हें 24 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर रही हूँ, क्या इतने काफ़ी होंगे? इशिका के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी और उसने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। राधिका ने तुरंत अपने मैनेजर से बात की और अपने प्राइवेट अकाउंट के लगभग सारे पैसे इशिका को ट्रांसफ़र करवा दिए थे। उसने इशिका को चेक दिया था। इशिका को उम्मीद थी कि आशीष और आयशा के बीच जो भी पक रहा है उस वजह से राधिका को कोई दिक्कत ना हो। अगर बात राधिका पर आई तो फिर वो सारी हदें भूल जाएगी और आयशा को अच्छा सबक सिखाएगी। थैंक यू सो मच मुझ पर यकीन करने के लिए, इशिका वहां से उठाते हुए बोली। सच कहूं तो इन पैसों पर तुम्हारा ही हक है। तुमने हमारी कंपनी के लिए जो किया है उसके लिए इतने पैसे काफी कम हैं, लेकिन तुमने कभी कुछ नहीं लिया। मुझे खुशी हुई कि आज जरूरत पड़ने पर तुम मदद देने के लिए मेरे पास आई। आगे भी ऐसे ही बिना सोचे समझे जब भी जरूरत हो आ जाना, राधिका ने काफी प्यार से कहा। इशिका के इतने पैसे मांगने पर भी एक बार भी वो परेशान नहीं हुई और उन्होंने बिना सोचे समझे इशिका को इतने पैसे दे दिए थे। इशिका की सच्चाई सामने आ जाने के बाद श्रुति ने भी दखल नहीं दिया। सिंघानिया विला से निकलने के बाद दिशांक ने इशिका को हॉस्पिटल छोड़ दिया था। इशिका की गाड़ी से बाहर निकलते ही एक ब्लैक लग्जूरियस गाड़ी वहां पर रुकी। वो अभिमन्यु की गाड़ी थी। उन्हें देखकर इशिका वहीं पर रुक गई थी। पृथ्वी ने इशिका के सामने सिर झुकाया और काफी रिस्पेक्टफुली कहा, मिस सिंघानिया आप वापस आ गई हैं? अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखा, वो उदास लग रही थी। अभिमन्यु उससे कुछ दूर खड़ा था, फिर भी वो अकेले अंदर नहीं गई, मानो उसी के आने का इंतजार कर रही हो। अभिमन्यु इशिका के पास आया तो वो उसके साथ चलने लगी। अचानक अभिमन्यु को कुछ एहसास हुआ और उसने शांत लहजे में कहा, मिस सिंघानिया लगता है आप अपनी माँ की वजह से कुछ ज्यादा ही परेशान हैं। इशिका ने बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिला दिया था। वैसे भी मालविका ने जो तमाशा किया था उसके बाद उसके पास बोलने के लिए कुछ रहा भी नहीं था। अभिमन्यु वहीं पर रुका तो इशिका भी रुक गई। अभिमन्यु ने इशिका की आंखों में देखा और सख्ती से कहा, असल में कुछ रिश्तों को दिल से नहीं लगाना चाहिए मिस सिंघानिया। कुछ लोग माँ बाप बनने के लायक नहीं हैं, इसीलिए अच्छा है कि हमें उन्हें अजनबी समझकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए।
इशिका ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो उसके चेहरे को देखने लगी। अभिमन्यु, जो कभी ज्यादा बातें नहीं करता था, वो आज इशिका को समझा रहा था। बोलते वक्त अचानक उसके चेहरे के भाव इतने सख्त हो गए मानो वो अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो। तभी इशिका को याद आया कि आज तक उसने वसुधा के मुंह से अभिमन्यु की माँ के बारे में नहीं सुना था। उसके अपने पिता के साथ भी रिश्ते इतने खराब थे कि वो बात तक नहीं करते थे। इशिका को उसके मूड ऑफ होने का कारण समझ आ गया था। इशिका मन ही मन बड़बड़ाकर बोली, अफसोस कि माँ बाप के मामले में हम दोनों की किस्मत एक जितनी खराब है। अचानक इशिका ने एक छोटी सी मुस्कुराहट दी और बोली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी कि अभिमन्यु अपनी सारी टेंशन भूल गया था। उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जो इतनी छोटी थी कि किसी को दिखाई तक नहीं देती थी। बस हल्का मुस्कुराते वक्त उसकी आंखें थोड़ी सी छोटी हो जाती थीं। अभिमन्यु इशिका के चेहरे को देखते रहना चाहता था, लेकिन तुरंत ही उसने अपनी नजरें हटाईं। अभिमन्यु ने बातचीत का टॉपिक बदलते हुए कहा, मैंने R&D डिपार्टमेंट और पूरे राजवंश एम्पायर में कह दिया है कि कोई भी आपकी पहचान को पब्लिक ना करे। थैंक यू, इशिका ने उसी छोटी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। इशिका अभी भी अपनी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील करने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी कंपनी अभी पब्लिक नहीं हुई थी, इस वजह से अगर गलत वक्त पर उसकी आइडेंटिटी बाहर आती तो उसके लिए कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती थीं। वेलकम, अभिमन्यु ने इतना ही कहा। ऊपर जाते हुए इशिका को कुछ याद आया। उसने रुककर अभिमन्यु से पूछा, सुबह आप मुझे दिशांक के बारे में कुछ बताने वाले थे, मीटिंग के बाद हमें मिलने का मौका नहीं मिला, आप अब बता दीजिए। इशिका की बात सुनकर अभिमन्यु के चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। पीछे चल रहा पृथ्वी भी रुक गया था। वो दोनों ही असहज हो रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि इशिका दिशांक की गर्लफ्रेंड है। उनके हिसाब से दिशांक एक दिलफेक आशिक था, जो एक साथ कई लड़कियों को डेट करता था। वो बस इशिका को उसकी सच्चाई बताकर उसे सावधान करना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें पता चल गया था कि दिशांक सिर्फ इशिका के लिए काम करता था। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दें। क्या लगता है कि अभिमन्यु इशिका को क्या जवाब देगा? वो सीधे सीधे तो कह नहीं सकता कि उन्हें क्या डाउट था, ये तो अगले पार्ट में पता चल जाएगा। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा और थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।